पाठ 10, अध्याय 10 एवं 11। उत्पत्ति के अध्याय 10 और 11 का महत्व यह है कि वे जल प्रलय के बाद नई दुनिया की शुरुआत से लेकर बाइबिल के महानतम कुलपिता अब्राहम तक के सेतु हैं। ये दो अध्याय जितने संक्षिप्त हैं, हमें शेम और अब्राहम के बीच वंशावली का एक लिंक मिलता है, साथ ही वंश की सभी महत्वपूर्ण रेखाओं को भी, जिन्हें अब 3 अलग अलग समूहों में विभाजित और अलग कर दिया गया है। प्रत्येक की अपनी नियति है और यह नियति आशीष में निहित थी और एक बेटे के लिए एक अभिशाप जो नूह ने अपने 3 लड़कों को दिया था। मैं कुछ स्पष्ट कर दूं, शेम, हाम और येपेत नूह द्वारा पैदा किए गए एकमात्र बेटे नहीं थे। वे अज्ञात कारणों से के समूह में शामिल होने के लिए चुने गए बेटे थे, धर्मी। वे 8 लोग जिन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने के उद्देश्य से जल प्रलय के माध्यम से रहने की अनुमति दी गई थी। नूह के जीवन के 600 वर्षों में कई बेटे और बेटियां थीं जो उसने जल प्रलय शुरू होने के समय प्राप्त की थीं, और मुझे संदेह है जल प्रलय के बाद और अधिक पिता बने। वे स्पष्टतः कहानी के उद्देश्य के लिए महत्वहीन थे, इसलिए उनके बारे में नहीं लिखा गया। बेशक शेम, हाम और येपेत नूह के एकमात्र जीवित पुत्र थे। बाकी सभी बेटियाओं, पोतियाओं, पोते, परपोते और बोलने के लिए बहुत सारा महान थे। सभी को यहोवा ने दुष्ट समझा और सभी को जल प्रलय में अन्य सभी के साथ ही नष्ट कर दिया। पद 6 में हम हाम की लाइन का अनुसरण करते हैं, हाम की शापित लाइन, और हमें इन नामों पर बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे बाइबल में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। कुश इथियोपिया है, मिज़राइम मिस्र है, पूत लीबिया है और कनान भूमि का संस्थापक है जिसे यहोशू ने जीत लिया जो इज़राइल बन गया। कनान के वंशज मध्य पूर्व और पूर्वी देश के कई लोगों का हिस्सा है, जिनमें से कुछ को अक्सर गलती से अरब कहा जाता है। अरब शेम की वंशावली के हैं, हाम की नहीं। हमें बताया गया है कि कुश कुख्यात निमरोद का पिता था। अब यह आपके लिए आश्चर्य की बात हो सकती है कि निमरोद एक काला आदमी था। यह बिल्कुल भी अनुमान नहीं है। निमरोद की हजारों साल पुरानी कई मूर्तियां और नक्काशियां मिली हैं और वे सभी उसकी नीग्रो विशेषताओं की पुष्टि करती हैं। और यह बिल्कुल तार्किक है कि निमरोद एक काला आदमी होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में जब भी आप कुशाइट्स कहे जाने वाले लोगों को देखते हैं, यानी कुश के वंशज लोग, तो आप अपने संदर्भ के लिए उन्हें इथियोपियाई कह सकते हैं। सामान्यतः बोल रहा हूं कि काले जाति के लोग। इसके अलावा यह प्राचीन यहूदी परंपरा है कि हाम एक काला आदमी था।
हमें केवल निमरोद का नाम नहीं लेना चाहिए और फिर तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। अगला अध्याय पराइने के बाद हम उसके बारे में और बात करेंगे। अभी के लिए इतना कहना पर्याप्त है कि बर मात्रा में पाई गई प्राचीन असीरियन गोलियां न केवल निमरोद का उल्लेख करती हैं, बल्कि वे उसके शीर्षक की पुष्टि भी करती हैं, जिसे हम 10:9 में देखते हैं, शक्तिशाली शिकारी। लेकिन जैसा कि अशूर की गोलियां बताती हैं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह हिरण, मुर्गी, खरगोश या जंगली सुअर को मारने में अच्छा था। उसकी अभिव्यक्ति का अर्थ है मनुष्यों का शिकारी, एक योद्धा, और एक भयंकर योद्धा होने के कारण वह पहला साम्राज्य निर्माता और विश्व तानाशाह बन गया, और वह पहला साम्राज्य बाबेल था, सबसे प्राचीन बेबीलोन, न कि नबूकदनेस्सर का बेबीलोन जो कई सदियों बाद आया था। निमरोद के दिनों में बाबेल बेबीलोन शिनार की भूमि में स्थित था, जो कि अब्राहम के आगमन से थोर पश्चिम में एक क्षेत्र था और आधुनिक इराक में स्थित था। निमरोद को उस क्षेत्र के 3 अन्य प्रमुख शहरों के साथ साथ बाबेल के निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। आगे हमें बताया गया है कि अशूर ने आगे बढ़कर अशूर के केंद्र में स्थित शानदार शहर नीनवे का निर्माण किया, और बेबीलोन की तरह इस अशूर साथी ने अशूर में 3 और महान शहर बनाए। अशूर कौन है? अशूर केवल निमरोद का असीरियन नाम है, निमरोद एक बेबीलोनियाई नाम है। तो पद 11 अभी भी उसी आदमी के बारे में बात कर रहा है, बस एक अलग भाषा का उपयोग कर रहा है, और वह आदम निमरोद था।
मैं आपको बाइबिल के नामों के बारे में तो रहस्य बताता हूं अक्सर, आप एक ही व्यक्ति को तीन या चार अलग अलग नामों के साथ देखते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किस देश में रहता था, बाइबल का विवरण वास्तव में किस युग में लिखा गया था, बनाम कब दर्ज की गई एक घटना वास्तव में घटित हुई थी और कौन सी संस्कृति उसके बारे में बात कर रही थी। क्योंकि आज की तरह जहां रिक या रिकी एक अमेरिकी उपनाम है, रिचर्ड एक अधिक औपचारिक अंग्रेजी शीर्षक है, रिकार्डो एक स्पेनिश शीर्षक है, हिकार्डो ब्राजीलियाई है, लेकिन सभी एक ही नाम की बात कर रहे हैं। यही बात राष्ट्रों, क्षेत्रों, शहरों और शहरों के संबंध में भी होती है। जैसे जैसे संस्कृतियां और भाषाएं बदलती हैं, कालानुक्रम में नाम बदलते जाते हैं, लेकिन यह अभी भी उसी व्यक्ति या स्थान को संदर्भित करता है। पद 13 में हमें कुछ ऐसा बताया गया है जिसका हमारी वर्तमान घटनाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मिट्जराइम, हाम का बेटा, बुराई की रेखा, परमेश्वर द्वारा शापित मिट्जराइम ने कसलुचिम नामक लोगों को जन्म दिया। कसलुचिम से खूंखार पलिश्तियों का अवतरण हुआ। और हमें यह याद रखना होगा कि फिलिस्तीन के लिए आधुनिक वचन फिलिस्तीन है। आज के फिलिस्तीनी फिलिस्तीनियों के वंशज होने का दावा करते हैं जो हाम के वंशज हैं। वास्तव में यह सच नहीं है। जिन फिलिस्तीनियों को हम हर रात टीवी पर इजरायली यहूदियों से लड़ते हुए देखते हैं, उनमें से अधिकांश मध्य पूर्व के विभिन्न क्षेत्रों से आए अरबी हैं, जो पिछले 75 से 100 वर्षों में यहूदी खेतों पर काम की तलाश में पवित्र भूमि क्षेत्र में अप्रवासी के रूप में आए थे और यहूदी कारखानों में। और अरब हाम के वंश से नहीं, वे शेम के वंश से हैं। जैसा कि कहा गया है, तथ्य यह है कि इनमें से कई लोगों ने इसराइल के प्रति अपनी नफरत से पलिश्तियों के साथ पहचान करने का एक सचेत निर्णय लिया है, क्योंकि पलिश्ती इसराइल के कट्टर दुश्मन थे। लेकिन उन्होंने अनजाने में ही अपने लिए एक बार समस्या खर कर ली है। जिस प्रकार किसी भी वंश का व्यक्ति औपचारिक रूप से स्वयं को इसराइल के साथ पहचान कर भौतिक स्तर पर धर्म परिवर्तन करके और यहूदी बनकर इसराइली बन सकता है, उसी प्रकार क्या कोई व्यक्ति पलिश्तियों के साथ पहचान बनाकर फिलिस्तीन बन सकता है? कई फिलिस्तीनी अरबों ने बुराई की लाइन में शामिल होने के लिए अपनी अच्छाई की विरासत को छोड़ दिया है, शेम, हाम। अधिकांश अरबियों की तरह उन्होंने भी एक झूठे ईश्वर अल्लाह के लिए यहूदी ईश्वर यहोवा को त्याग दिया, और इसके लिए उनका न्याय किया जाएगा। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इस तथ्य के प्रति जागने के लिए उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वैसे भी हम पद 15 से 18 में कनान द्वारा उत्पन्न जनजातियों की एक सूची देखते हैं। बाद में मिस्र से पलायन के दौरान आप देखेंगे कि इनमें से कई नाम इसराइलियों के दुश्मनों के रूप में फिर से प्रकट होंगे, जो उन्हें वादा किए गए देश से बाहर रखने की कोशिश करेंगे। पद 21 में अब हम शेम की धन्य वंशावली पर आते हैं, अच्छाई की वंशावली। ध्यान दें कि हमें शेम के पुत्र के रूप में अशूर नाम मिलता है। याद रखें, यह वह अशूर नहीं है जिसने नीनवे नगर बनाया है। वह अशूर केवल निम्रोद का असीरियन नाम था। यह अशूर नाम का एक और व्यक्ति है। मुझे शेम की पंक्ति का वर्णन करने वाले पदों के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को संक्षेप में प्रस्तुत करने दें। आप देखेंगे कि शेम को एवर या एबर के बच्चों या वंशजों के पिता या पूर्वज के रूप में जाना जाता है। यह इब्रानी इतिहास की कुंजी है, क्योंकि एबर की पंक्ति से परमेश्वर के द्वारा विभाजित किए गए लोग आएंगे, पेलेग और योक्तान, बांटना, चयन करना, चुनाव करना। इस पर ध्यान दें, क्योंकि यह एक प्रमुख विषय है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे ईश्वर पूरी बाइबल में और उस मामले में हमारे अपने जीवन में अपनी इच्छा को कार्यान्वित करता है। पेलेग और योक्तान दोनों भाई थे और एवर के पुत्र थे। दिलचस्प बात यह है कि पेलेग का अर्थ है विभाजन, क्योंकि पेलेग के वंश से अब्राहम आया, जिसे सारी मानव जाति को बचाने, गिरे हुए मनुष्य को अपने आप में पुनर्स्थापित करने की परमेश्वर की योजना आई। उत्पत्ति 11 पूरा पिरहें। अध्याय 10 में हमारे पास पृथ्वी के राष्ट्रों के वंशावली इतिहास का विस्तृत सारांश था। अध्याय 11 में हम एक कदम पीछे हटते हैं
और निमरोद की जांच से शुरू करते हैं और क्यों पृथ्वी के लोग इतनी तेजी से और पूरी तरह से फैल गए। हमें बताया गया है कि निमरोद के समय तक पूरी दुनिया में हर व्यक्ति एक ही भाषा बोलता था। जाहिर तौर पर लोग बहुत ही नपी तुली दर से फैल रहे थे और वे आम भाषा से काफी जुड़ हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुद को एक दूसरे से अलग नहीं किया था। वे सिर्फ विस्तार कर रहे थे, जैसे कि शहरीकरण होता है। ये भी ध्यान दें कि उन्होंने किस दिशा में विस्तार किया, पूर्व, वहां फिर वही पूर्व वचन है, एक वचन, हमारे लिए महत्व का, और यहां इसका सबसे बड़ा अर्थ है। ध्यान दें कि वचनों में कहा गया है कि वे, मतलब नूह के अधिकांश वंशज, पूर्व से शिनार आए थे, बजाय यह कहने के कि वे पूर्व की ओर चले गए। यह थौर भ्रमित करने वाला है, क्योंकि शिनार दक्षिण और पूर्व में है जहां से वे आए थे। शिनार आधुनिक इराक में फारस की खार के पास बसा शहर के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में है। शिनार और सुमेर एक ही जगह हैं, बस अलग अलग भाषाएं हैं। यहां पूर्व से आगे बढ़ने का संदर्भ दिया गया है, कहां से पूर्व की ओर जाकर परमेश्वर ने उन्हें रखा था, वे संक्षेप में परमेश्वर से दूर चले गए। अब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने जो किया वह बुराई है। आखिरकार वे काफी हद तक वही कर रहे थे जो परमेश्वर ने निर्देश दिया था, ग्रह को फिर से आबाद करना। इसके बजाय बाइबिल के अनुसार वे पूर्व से दूर जा रहे थे। यह इस बात का प्रतीक था कि वे परमेश्वर से आजादी प्राप्त करना चाहते थे। हम में से कुछ लोगों की तरह जो वयस्क होने का इंतजार नहीं कर सकते थे, ताकि हम अपने माता पिता के अधिकार से दूर जा सकें। अब क्या निमरोद ने बाबेल शहर पाया, जिसे अब हम बेबीलोन कहते हैं, इस अर्थ में कि यह वही था जिसने जमीन में खंभा गाड़कर कहा था यहां निर्माण करो? शायद नहीं। उन्होंने संभवतः शहर के प्रारंभिक विकास के किसी बिंदु पर शासक पद संभाला था। यह एक सामान्य प्रथा थी और इसे दूसरे स्तर पर ले गए, और समय के साथ बाबेल एक विशाल शहर बन गया, जिसका सबसे छोटा अनुमान इसकी दीवारों के अंदर एक मील वर्ग था और बर अनुमान उस आकार का 5 गुना था। और निसंदेह वहां वह मीनार है, बेबेल की मीनार। तकनीकी रूप से टॉवर एक जिगुराट था, एक प्रकार का सीरहीदार पिरामिड। आधुनिक इराक और ईरान में कई प्राचीन जिगुराट खोजे गए हैं, और यह विशेष जिगुराट 2 घोषित उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। एक, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, ताकि वे अपने लिए नाम कमा सकें, और दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बिखरे हुए न हों। नीचे की पंक्ति विशाल पैमाने का विद्रोह, जैसा कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा, शेम का अर्थ नाम है, और यहां शेम शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब यह निमरोद के उन अनुयायियों को संदर्भित करता है जो अपने लिए नाम कमाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि नाम वचन बॉब या एलिजाबेथ या फ्रेड का संदर्भ नहीं दे रहा है। इस इब्रानी वचन शेम का बेहतर अनुवाद प्रतिष्ठा के रूप में किया जाएगा, क्योंकि यह अपने साथ शक्ति और अधिकार की भावना रखता है। उदाहरण के लिए, निमरोद का अर्थ है शक्तिशाली शिकारी, यही उनकी प्रतिष्ठा थी, इसलिए उन्होंने अपने आप में शक्ति और अधिकार होने की प्रतिष्ठा बनाने के लिए स्वर्ग तक एक मीनार बनाई, और जिस कारण से वे प्रतिष्ठा चाहते थे वह परमेश्वर को यह दिखाना था कि वे उसके प्रति आज्ञाकारी नहीं होंगे और बिखर जाएंगे, क्योंकि वे पूरी तरह से समझते थे कि उन्हें क्या करना है। इसके अलावा तानाशाह बनने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति, जैसा कि निमरोद था, को यह प्रदर्शित करना होगा कि वह सर्वशक्तिमान है, ताकि लोग उसके प्रति समर्पण कर दें। यह निमरोद जो कर रहा था उसका एक हिस्सा था। वचनों से यह स्पष्ट है कि नूह के दिनों से भी मनुष्य को तितर बितर करना था। पूरी दुनिया को फिर से आबाद करने के लिए ये परमेश्वर के निर्देश थे। वे आदेश खोए या भुलाए नहीं गए थे, उन्हें बस नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन अब निमरोद के नेतृत्व में वे तितर बितर होने के परमेश्वर के आदेश की खुलेआम अवहेलना करने लगे, जैसा कि आयत 4 में कहा गया है, ताकि हम सारी पृथ्वी पर तितर बितर ना हो जाए। इन शुरुआती बेबीलोनियाई दिमागों में यह विचार था, परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं, कोई भर बात नहीं, हम मनुष्य अपनी अद्भुत बुद्धि से स्वर्ग तक एक मीनार बनाने का तरीका खोज सकते हैं, इसलिए हम चाहें तो वहां भी रह सकते हैं, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम परमेश्वर को बताएंगे कि हमने तय किया है कि हमें वह सारी शक्ति, ज्ञान, धन और आराम पसंद है जो हमने साथ रहकर हासिल किया है, बिखर कर नहीं, और यही तरीका है जिससे हम इसे बनाए रखेंगे, और इसे रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। और वैसे जब हर कोई इसके बारे में सुनेगा तो हम वास्तव में अपने लिए एक प्रतिष्ठा बना लेंगे और कोई भी हमारे खिलाफ नहीं आना चाहेगा। क्या यह उस स्थिति से बहुत दूर है जहां हम आज मानव जाति के रूप में खर हैं? क्या मनुष्य वर्तमान में यह नहीं कह रहा है, परमेश्वर आपके तरीके पुराने और अप्रचलित हैं, हमने इतना बेहतर ज्ञान एकत्र किया है कि हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं बल्कि हम इसे आपसे बेहतर कर सकते हैं। वास्तव में आप और पिछड़े लोग, जो लोग आपसे और आपके तरीकों से चिपके रहते हैं, वे सिर्फ एक बाधा हैं जहां हम मानव जाति जाना चाहते हैं और जा सकते हैं आपकी मदद के बिना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपकी मूर्खता की आवश्यकता नहीं है। नैतिक निर्देश हम अपना खुद का बना सकते हैं जैसा कि हमें उनकी आवश्यकता है और जीवन के प्रत्येक स्थिति के लिए प्रासंगिक है। हम जीवन का उत्पादन कर सकते हैं और इसे अपने विनिर्देशों के अनुसार निर्मित कर सकते हैं। विवाह केवल पुरुष और महिला के बीच, बहुत समय बीत गया, आज के लिए आवश्यक नहीं है। निम्रोद ने जो किया वह आज हमारी धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी संस्कृति हमें जो करने के लिए प्रेरित कर रही है उससे कुछ भी अलग नहीं है। विद्रोह शुद्ध और सरल। पद 5 में हम उन आलंकारिक अभिव्यक्तियों में से एक पर आते हैं जिसमें परमेश्वर टावर को देखने के लिए नीचे आए। क्या हो रहा था यह जानने के लिए परमेश्वर को निश्चित रूप से हिलना नहीं पर, लेकिन, और मुझे वास्तव में यह पसंद है, परमेश्वर ने इस विद्रोह को एक शानदार झटके में दबा दिया। उसने हर किसी को अलग अलग भाषाएं दी। एक टीम बनाने का प्रयास करें, कुछ भी बनाएं, जब कोई किसी और की भाषा नहीं बोलता हो। वैसे पूरा भाषाविद, यानी भाषा के इतिहास पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हाल ही में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी भाषाएं एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई हैं। वे इसके लिए कर मेहनत कर रहे हैं, पता लगाएं कि कौन सा और कहां से है। समय की बर्बादी के बारे में बात करें, उन्हें बस यह अध्याय परेचना है। पद 6, जब हम इब्रानी को देखते हैं तो हमें कुछ दिलचस्प अंतर्दृष्टि मिलती है। यह कहता है कि जब परमेश्वर ने इन लोगों पर नजर डाली तो उन्होंने जो देखा वह एकता थी। वे एकजुट थे और उनकी एक ही भाषा थी, वे सभी एक होकर बात करते थे। इब्रानी में यह कहा गया है कि वे ईचड़ थे, जो स्वयं ईश्वर से झुर एक गुण है, अर्थात लोग स्वाभाविक रूप से झुर हुए और अविभाज्य थे, और परमेश्वर को यह पसंद नहीं आया। लेकिन उनके एकजुट होने में इतनी बुरी बात क्या है? सभी के लिए, एक एक सभी के लिए। क्या यह हमारे देश के हर चर्च, हर मंच से पुकार नहीं है? एकता, एकता। आप देखिए, मानव जाति, जिसमें चर्च भी शामिल है, के अर्थ में एकता इसे परिभाषित करती है, एक गलत सिद्धांत है। यहां बाबेल में लोगों के पास एक नेता था और उनके पास एक दृष्टिकोण और एक उद्देश्य था जिसे वे अच्छा मानते थे, और इसलिए चूंकि वे सभी ऐसा सोचते थे और सभी इसे चाहते थे, उनमें एकता थी। फिर भी जब हम धर्म ग्रंथों की जांच करते हैं तो हम ईश्वर को एकीकृत होते हुए नहीं देखते हैं, हम ईश्वर को विभाजित करते, चुनते और अलग करते हुए देखते हैं। बाद में जब हम इसराइल को मिस्र में घुसते हुए देखते हैं और फिर जब हम लैव्य व्यवस्था के नियमों का अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि यहोवा लगातार लोगों से खुद को अशुद्ध और अपवित्र लोगों से अलग करने के लिए कह रहा है। भोजन और जानवरों और व्यवहार जैसी शुद्ध और अशुद्ध चीजों को अलग करना निम्रोद और उनके अनुयायियों के लिए अलगाव उनका इरादा था। एकता अपने आप में कोई बुरी बात नहीं है, मुख्य बात यह है कि एकीकृत करने वाला एजेंट क्या है या कौन है। सहमति और समझौता मनुष्य की एक प्रकार की एकता है। यह वह प्रकार है जिसे हम पूरे ईसाई जगत और सामान्य रूप से दुनिया भर में देखते हैं। मनुष्य हाथ पकड़कर कहते हैं कि हम एक हैं। ईश्वरीय एकता की तरह उसमें एकता है,
यह प्रत्येक व्यक्ति है जो मसीह का हाथ थामे हुए है और एक तीलीदार पहिए के केंद्र की तरह मसीह एकता का बिंदु है। इसका आम सहमति, समझौते या यहां तक कि बहुमत के नियमों से कोई लेना देना नहीं है।
यह भी दिलचस्प है कि हमें इस सिद्धांत का एक अद्भुत प्रदर्शन हजारों साल बाद होने वाली विपरीत चीज के रूप में मिलता है। हमारे विपरीत के सिद्धांत को याद रखें। हमारे ब्रह्मांड में हर चीज का विपरीत या आप वैज्ञानिकों के लिए विपरीत परिणाम होता है। यहां बाबेल की मीनार की कहानी में परमेश्वर एक बार फिर प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह कैसे उसे विभाजित और अलग करेंगे जिसे मनुष्य एकजुट करना चाहता है। और इस अवसर पर उन्होंने जिस विभाजन तंत्र का उपयोग किया वह भाषा थी।
हालांकि प्रेरितों की पुस्तक में हम मनुष्य को पिंतेकुस्त के दिन ईश्वर के मार्ग में एकीकृत होते हुए देखते हैं, वास्तव में उसे एकीकृत करना जिसे उसने 2000 वर्ष पहले विभाजित और अलग कर दिया था।
प्रेरितों के काम 2:1-21 पर हैं।
क्या आप पिंतेकुस्त और बाबेल की मीनार के बीच इस आकर्षक संबंध को देखते हैं? टॉवर पर परमेश्वर ने मनुष्य को अलग अलग भाषाएं देकर उनकी एकता को तोड़ दिया ताकि वे संवाद न कर सकें, इसलिए मनुष्य की एकता पूर्ववत और सीमित हो गई। मानव आत्मा ही वह चीज थी जो मानव जाति को बाबेल की मीनार पर ले जा रही थी और मानव भावना ही वह थी जो एकता को परिभाषित कर रही थी। अब पिंतेकुस्त शवोट में परमेश्वर पवित्र आत्मा को मनुष्य में डालते हैं और उन्हें परमेश्वर की आत्मा के माध्यम से एकजुट करते हैं, समझौते और सर्वसम्मति के माध्यम से नहीं। एकता कोई भौतिक प्रकार की एकता नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक प्रकार की एकता थी। वह उन्हें इसकी क्षमता भी देता है। वे ऐसी भाषाएं समझते और बोलते हैं जिन्हें वे पहले कभी नहीं समझते थे या बोलते थे। बाबेल के टॉवर पर जो हुआ उसके बिल्कुल विपरीत, जब उसने उन्हें वे सभी भाषाएं दी जिन्हें वे नहीं समझ सकते थे। आइए निमरोद के बारे में थोड़ा बात करते हैं। निमरोद एक वास्तविक शाब्दिक व्यक्ति था, लेकिन वह एक प्रकार का व्यक्ति भी था। वह उस प्रकार का पहला व्यक्ति है जो दुनिया पर शासन करना चाहता था और उसके सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतिम व्यक्ति बन जाएगा जो दुनिया पर शासन करना चाहता है, मसीह विरोधी। निमरोद पाप का आदमी है जो पूरी तरह से शैतान के वश में था, पूरी तरह से अपने स्वयं के बुरे झुकाव के कारण। तो क्या निमरोद के बाद आने वाले बहुत से लोग एक ही प्रकार के होंगे? फिरौन, एंटियोकस एपिफेनीज, नीरो और हिटलर जैसे कुछ नाम? अधर्म में परिणति, वह पाप का आदमी, वह जानवर जिसे मसीह विरोधी कहा जाता है। और निसंदेह यह उस व्यक्ति का विरोध करना है जो बिल्कुल विपरीत है, यीशुआ यीशु मसीह, जो पूरी तरह से स्वामित्व में है और यहोवा के साथ एक है। कुश के पुत्र हाम के शापित वंश के निमरोद को इतिहास में पहला साम्राज्य निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। वह पहला व्यक्ति है जो न केवल जानवरों पर बल्कि मनुष्यों पर भी हावी होना चाहता है। वह चार दीवारी वाले शहर का निर्माण करने वाला पहला व्यक्ति है। यह इस बात का सुराग है कि क्यों उन्हें युद्ध का आविष्कारक माना जाता है, यानी आप जहां रहते हैं उसके चारों ओर दीवार बनाने का एक ही कारण है, आत्म सुरक्षा। और यदि आप इस विचार के बारे में सोचने वाले पहले व्यक्ति थे तो कल्पना करें कि आप कैसे बाहर जा सकते हैं और दूसरों पर हमला कर सकते हैं और उन्हें जीत सकते हैं और दीवारों के पीछे सुरक्षित रूप से पीछे हट सकते हैं ताकि अन्य लोग आपके साथ ऐसा न कर सकें। निमरोद ने सेमीरामिस से विवाह किया। उनके मरने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें परमेश्वर घोषित कर दिया। इसके अलावा परमेश्वर की सांसारिक पत्नी के रूप में उसने खुद को स्वर्ग की रानी बना लिया। उनका एक बेटा था जिसका नाम तमुज था। तमुज को निमरोद का पुनर्जन्म या पुनर्जन्म माना जाता था। तो अब हमारे पास एक मानव देव शासक था, तमुज, जिसका सार निमरोद था। पिता परमेश्वर, स्वर्ग की रानी मां और एक पुत्र का यह सूत्रीकरण जिसका सार पिता का पुनर्जन्म था, भविष्य के सभी झूठे धर्मों का आधार बन गया। वे धर्म जिन्हें परमेश्वर रहस्य बेबीलोन धर्म कहते हैं, उन सभी का आरंभ बिंदु निमरोद से है।
उस दिन के बाद से निमरोद और सेमीरामिस अब परमेश्वर और देवी के रूप में प्रतिष्ठित, दोनों अलग अलग नामों से प्रकट हुए हैं। नाम उस भाषा और संस्कृति को दर्शाते हैं जिसने उन्हें अपनाया था। इसलिए सभी माताओं की मां के रूप में सेमिरामिस प्रजनन देवी थी। मिस्र में उसका नाम आइसिस था, भारत में इंद्राणी, एशिया में साइबल, बाद में विशेष रूप से पवित्र भूमि के क्षेत्र में उसे एशटेरोथ कहा जाएगा। उनका सबसे पुराना जात नाम एस्टार्ट था। जहां तक निम्रोद की बात है, उनकी ईश्वरीय छवि बाइबिल के बाल अल के रूप में जानी जाने लगी और ईश्वर पुरुष निनस के रूप में जिसने नींदवे का निर्माण किया। बाद में निम्रोद को मर्दुक और फिर मोलिक के नाम से भी जाना जाने लगा।
मैं आपको यह दिखाता हूं ताकि आप हमारे धर्म ग्रंथों में शुरू से अंत तक दिखाई देने वाली बुराई की उलझन को देख सकें। और वह क्या है? जो रहस्यमय बेबीलोन धर्मों को बनाता है, कम से कम मूलभूत रूप से, और यह कहां से आया है? और नूह द्वारा हाम की वंशावली का भविष्य सूचक अभिशाप कैसे चल रहा है? आप अपने जूते हो सकते हैं कि मसीह विरोधी हाम की पंक्ति से होंगे।
दिलचस्प बात यह है कि निम्रोद ने सबसे पहले जिस शहर का नाम बावेल बनाया था, उसका प्राचीन काल में अब से अलग अर्थ था। बावेल की वर्तनी पर ध्यान दें। ईएल वचन ईश्वर को इंगित करता है, वास्तव में सर्वोच्च ईश्वर। मूल रूप से बावेल का मतलब परमेश्वर का शहर था। आखिरकार वहां जो हुआ उसे प्रतिबिंबित करने के लिए इसका अर्थ बदल दिया गया और बावेल वचन का अर्थ भ्रम हो गया। निष्कर्ष: अंत में भाषाओं के भ्रम के परिणाम स्वरूप बावेल शहर बेबीलोन ने अपना विस्तार रोक दिया और लोग बाहर चले गए और अब बहुत तेज गति से दुनिया के दूर दराज के स्थानों पर फिर से बसना शुरू कर दिया। क्या यह उत्सुक नहीं है कि मनुष्य के इतिहास में उस समय परमेश्वर ने मानवीय भाषा को भ्रमित करके मनुष्य का न्याय किया और हमें तितर बितर होने के लिए मजबूर किया? लेकिन फिर पिंतेकुस्त के दिन हजारों साल बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के प्रवाह के माध्यम से मनुष्य को आशीष दिया, जब परमेश्वर का सत्य हर किसी हर भाषा के द्वारा समझा जा सकता था। और वह घटना जितनी अद्भुत थी, वह भविष्य में एक और समय की ओर इशारा करती थी जब दुनिया के सभी देशों में परमेश्वर के लोग अपने फैलाव से वापस आएंगे एक आत्मा में एकजुट होने के लिए। हमारे वर्तमान और भविष्य के राजा यीशुआ हमाशियाच यीशु मसीह के अधीन हम परमेश्वर के इस संयुक्त राज्य को सहस्राब्दी राज्य कहते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं पता कि शैतान ने जो कुछ भी योजना बनाई है, उसी तरह वह तेजी से इसकी नकल करने की दिशा में काम कर रहा है? अपनी स्वयं की एक विश्व सरकार के रूप में आज हम उस पीढ़ी में हैं जो सक्रिय रूप से वही कर रही है जो निम्रोद ने करने की कोशिश की थी। पूरी दुनिया को एक ही व्यक्ति, एक बात, एक नियम और एक शासक के अधीन बांधना, एक आदमी, और चर्च के बर हिस्से आंख मूंद कर सहिष्णुता, विश्व सद्भाव, किसी भी कीमत पर शांति और थोरह के अंत का उपदेश दे रहे हैं ताकि हमें अपने दिल की अच्छाई पर भरोसा करना चाहिए। अध्याय 10 से इस अध्याय के अंत तक शेम की वंशावली का वर्णन किया गया है जो उससे शुरू होकर हमें अब्राहम तक ले गई। हमें अब्राहम और उसके परिवार के बारे में कुछ अच्छी बुनियादी जानकारी भी दी गई है। उदाहरण के लिए, उसके पिता 13 थे और अब्राहम के 2 भाई थे, कम से कम 2, और उनके नाम नाहोर और हारान थे। हारान का लूत नाम का एक पुत्र था, परंतु हारान मर गया। हम देखते हैं कि अब्राहम ने सारा नाम की एक महिला से शादी की थी। हमें बाद में पता चला कि वह उसके पिता की दूसरी पत्नी की बेटी थी, इसलिए सारा अब्राहम की सौतेली बहन होती। और हमें बताया गया है कि किसी कारण से सारा को बच्चे नहीं हो सके। एक जिज्ञासु बात जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, पद 31 में बताई गई है। ऐसा लगता है कि यह शुरू में 13 था, अब्राहम नहीं, जिसे सबसे पहले अपने परिवार को लेने और कनान देश में जाने के लिए बुलाया गया था। जब 13 को वह बुलावा आया तो वह और उसका परिवार कसदियों के ऊर नगर में रह रहे थे। चाल्डीज उस क्षेत्र की एक प्राचीन संस्कृति थी। सुमेर इस क्षेत्र का नाम था और ऊर वास्तव में राजधानी शहर था। वह भी बहुत दुष्ट स्थान था। वास्तव में यह चंद्रमा ईश्वर हुरकी की पूजा का सांस्कृतिक केंद्र था, जिन्हें आज अल्लाह के नाम से जाना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि किसी कारण से 13 ने उर छोड़ दिया, लेकिन दक्षिण पश्चिम से कनान की ओर जाने के बजाय वह उत्तर पश्चिम से मेसोपोटामिया की ओर चला गया। जब वे एक निश्चित शहर में पहुंचे तो उन्होंने कनान जाने के बजाय वहीं रुकने का फैसला किया। क्यों? हमें नहीं बताया गया, लेकिन यहीं अब्राहम के भाई हारान की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद शहर का नाम उनके नाम पर रखा गया। तकनीकी रूप से इस समय अब्राहम को अभी तक अब्राहम नहीं कहा जाता था, उसे अब्राम कहा जाता था, या इब्रानी में अवराम, जिसका अर्थ था उत्कृष्ट पिता। ये कई साल पहले होगा जब परमेश्वर ने उसका नाम अब्राम से बदलकर अब्राहम कर लिया था, जिसका अर्थ था बहुतों का पिता।